أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم سورہ آل عمران آیت نمبر 118 بہت امپورٹنٹ چیپٹر شروع ہونے والا ہے بہت امپورٹنٹ حصہ شروع ہونے والا ہے سورہ آل عمران کا جو پچھلی دفعہ ہم لوگوں نے سبق پڑھا تھا اس میں بیسیکلی یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ دنیاوی فائدے کے لیے عمل کرنا جو ہے اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کی مثال جو یہ خرچ کرتے ہیں فی ھذہ الحیاۃ الدنیا اس دنیا کی زندگی میں کمثل ریح جیسے ہوا ہے فیھا سفر جس میں پالا ہے اصوابت ہر قوم ظلم جو جا لگے اس قوم کی کھیتی کو جو ظلم کرتے ہیں انفسہم اپنی جانوں پر فاہلکت ہو تو پھر اسے ہلاک کر دے وما ظلمہم اللہ اور اللہ ظلم نہیں کرتا ولیکن انفسہم یظلمون لیکن یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں آج جو حصہ شروع ہو رہا ہے آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک پریکٹیکل مشق ہے یہ وہ پریکٹیکل ٹپس ہیں جو اللہ تعالی ہماری امت کو سمجھا رہا ہے کہ تم کیسے اپنی جان پر ظلم کرنے سے بچ سکتے ہو اس لیے اس لحاظ سے بہت ہی اہم سبق ہے یہ اور میں امید کرتی ہوں کہ میں آپ کو صحیح طرح سمجھا پاؤں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ تو ظاہر ہے بے عیب ہیں اور پرفیکٹ ہیں لیکن میری انسانی زبان میں یا میرے ایکسپیرینسز کی روشنی میں میں دعا کرتی ہوں کہ سب کو یہ بات ویسے ہی سمجھ آئے جیسے مجھے سمجھ آئی اپنی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا تو خطاب ایمان والوں کو ہے لا تتخذوا نہ تم بناؤ بطانۃً رازدار باطن سے نکلا ہے یہ باطانون پیٹ کو کہتے ہیں پیٹ کے اندر جو ہے نا جیسے ایک دوسرے سے جب پوچھتے ہیں کہ تمہارے پیٹ میں تو درد نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ الم فی بطن تیرے اندر تیرے پیٹ کے اندر درد ہے تو بطانت کا مطلب ہے کہ ایک انتہائی اندرونی راز جاننے والا دوست اس آیت کی دو انٹرپریٹیشنز میں آپ کو اس کے اینڈ میں انشاءاللہ بتاؤں گی جس سے آپ کو یہ بہتر سمجھ آئے گا کہ یہ لفظ رکھنے کی یہاں حکمت کیا ہے نہ تم رازدار دوست بناؤ من دونکم سوائے اپنوں کے یعنی یا ایوہ الذین آمنو ہے نا تو اے ایمان والو تم رازدار دوست نہ بناؤ سوائے ایک دوسرے کے یعنی ایمان والوں کے لا یعلونکم وہ کوئی کمی نہیں کرتے خبالا تمہاری خرابی میں ودو وہ چاہتے ہیں ما عنتم کہ تم تکلیف پاؤ قد بدد البغضاء البتہ بدت بدون باہر نکل آ چکی ہے ظاہر ہو چکی ہے البغضاء ان کی دشمنی ان کا بغض من افواہہم ان کے منہ سے وما تخفی اور جو چھپا ہوا ہے جو خفی ہے صدورہم ان کے سینوں میں اکبر وہ اس سے بھی بڑا ہے یعنی جو ان کے منہ سے نکلتا ہے تو وہ تو بہت کم ہے اس سے جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے صدور صدر جو ہے یہ ہمارے سینے کو کہتے ہیں جس میں ہمارا دل ہے اور دل وہ نقطہ ہے جس میں ہمارا قلب ہے اور قلب وہ نقطہ ہے جس پہ اللہ کی ہدایت کا نزول ہوتا ہے تو ان کے تو قلب ہی ہدایت سے محروم ہیں تو وہ دل اور وہ سینے جو ہیں وہ کس قدر نفرت کرتے ہیں اللہ سے اور اللہ والوں سے وہ ہم کبھی نہیں جان سکتے ہاں ان کے منہ سے جو باتیں نکلتی ہیں آپ سمجھیں کہ وہ 10% ہیں اس کا جو وہ اپنے سینوں میں چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں قد تحقیق بینا بیان کر دیا ہے ہم نے کھول کھول کر بیان کیا ہے ہم نے لکم تمہارے لیے الآیاتی آیات اپنی آیات ان کن تم اگر تم ہو تعقلون عقل رکھنے والے لینڈ مارک آیت ہے یہ اور بہت ایک اہم حکم ہے اس میں کہ دیکھو رازدار دوست انہیں نہ بناؤ اس کی پہلی غلط انٹرپریٹیشن تو یہ ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کیا مطلب ہے کہ ہم نان مسلمز کو اور غیر مسلموں کو ہم ہیلو بھی نہ کہیں और हम उनसे अच्छी तरह बात ना करें और हम उनसे अच्छी तरह मिले नहीं, ये आयत हरगिज ये नहीं कह रही है। क्योंकि इस्लाम का जो ज़ाते इखलाक है उसमें तो बद इखलाकी की जगह ही नहीं है, उसमें तो बद इखलाकी की कोई वो नहीं है, इजाजत ही नहीं है कि आप किसी से बदतमीजी करें, आप किसी के सामने त्योरी चढ़ा के बैठे रहें, आप किसी के उनको बुरा भला कहें, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। बात यह की जा रही है कि देखो अंदरूनी दोस्त, बातिन के दोस्त, राजदार दोस्त इन्हें ना बनाओ, इन्हें अपनी अंदर की सीक्रेट्स ना बताओ। अगर एक इंडिविजुअल हो तुम, अगर तुम अकेले हो तो भी नहीं बताना, अगर एक खानदान हो तो भी एक गैर मुस्लिम खानदान से दोस्ती करके उनको अपने खानदान की अंदरूनी बातें नहीं बताना, और एक उम्मत के लिहाज से अपनी उम्मत की कमजोरियां, अपनी उम्मत के मसले मसाइल इनको नहीं बताना। हाँ, ईमान वालों को बताना है। क्यों? ला यालूना कुम खबाला, वो तुम्हारी कमी, तुम्हारी खराबी में वो कोई कमी नहीं करते। देखिये, मैं ऐसे डॉक्टरों को जानती हूं, ये घर की बात अब मैं आपको बता रही हूं, कि उनके घर में कोई चपकलश हुई, कोई मियां बीवी में लड़ाई हुई और बीवी ने बाहर निकल के पड़ोसियों के सामने रोना धोना किया, जैसे हम अपने मुल्क में करते हैं, जैसे हम अपने खानदानों में करते हैं। तो बीवी ने घर से बाहर निकल के किसी पड़ोसन के सामने, जो ईसाई थी या जो शायद लादीन थी बाहर के मुल्क में, किसी मगरबी मुल्क में, वहां पे उसने रोना धोना किया, और वो जो खातून थी उसने फौरन इमरजेंसी को फोन करके बताया कि इस औरत के शौहर का दिमाग खराब है। अब वो इंतहाई कामयाब डॉक्टर था, और आप यकीन करें कि उसका लाइसेंस ले लिया गया और उसकी बीवी को वहां पे उससे अलग करके एक अलग जगह पे रख दिया गया, और डॉक्टर साहब को जिस कदर मसले मसाइल हुए हैं, जब पड़ोसन से पूछा गया तो उसने कहा कि ये तो सारे ऐसे होते हैं, ये तो सारे अपनी बीवियों को मारते पीटते हैं और हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते, और इनको सजा इन सबको मिलनी चाहिए। तो ये कमी नहीं करते तुम्हारी खराबी में, ये इंडिविजुअल की मैंने आपके सामने बात की है। इस तरह आप देखें कि अगर हम लोग कहीं पे इनके सामने से गुजरें और हमने अपने आप को कवर किया हुआ हो, और ये हमसे, हमें देखकर बड़ी हमदर्दी से कहते हैं, मेरे साथ हो चुका है ये, किसी बाजार में, किसी मॉल में, किसी सैर की जगह पे बड़ी हमदर्दी से कोई बुढ़िया या कोई खातून आपके करीब आके कहेगी, ओ डियर तुम्हें गर्मी नहीं लगती है, तुम्हें इतना, देखो फो तुम्हारा चेहरा तो इतना रेड हो रहा है, थोड़ी देर के लिए ये खोल दो। तो आप उस वक्त पोलाइटली अगर मुस्कुरा के इनको ये कहें कि नहीं मैं ये नहीं खोल सकती, या चूंकि आपका ध्यान नहीं होता कि ये किस नीयत से पूछ रही हैं, तो आप उनको आराम से ये कह देती हैं कि जी जहां पे इतने सारे मर्द हों तो वहां मुझे ये खोलने की इजाजत नहीं है। आपको पता है इस बात को ये इंटरप्रेट करके कैसे बताते हैं? ये कहते हैं कि ये लोग सप्रेस्ड हैं, मुसलमान औरतें सप्रेस्ड हैं, और इनके मर्द इन्हें मारते पीटते हैं अगर ये अपने स्काफ या अपने हिजाब किसी के सामने खोल दें। तो ये आपकी खराबी में कोई कमी नहीं करते। आप यकीन करें, हर जगह आके बड़ा मुस्कुरा के ये आपसे पूछेंगे, आप कहां से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम डियर। हालांकि हो सकता है आप अमेरिका में ही पैदा हुए हो, लेकिन चूंकि आपने लिबास मुसलमानों का पहना हुआ है, आपका हुलिया मुसलमानों जैसा है। ये पहली दफा मुझे ये बात रिसेंटली समझ आई जब मैं कहीं अमेरिका में किसी के साथ फिर रही थी, और उनसे आके किसी ने पूछा कि आप कहां से हैं, तो उन्होंने बड़ा एतमाद से कहा कि जी मैं इसी स्टेट से हूं जहां से आप हैं। बिल्कुल, यानी उन्होंने पलक भी नहीं झपकी जवाब देने में, और जब वो खातून मुंह बना के फिर चली गई, यानी उन खातून के रिएक्शन पे मुझे हैरत हुई कि वो बड़ा इस तरह मुंह बना के साइड पे चली गई, तो इन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है ये क्यों इतनी इरिटेट हुई हैं? क्योंकि मैंने इनको अपने असल मुल्क का नाम नहीं बताया, ये हमें ये बावर कराना चाहते हैं कि आपका इस मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है, आपका अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि आपने एक खास किस्म का लिबास पहना हुआ है। तो हर स्टेप पे बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। ईमान वाले जो हैं वो बड़े ग्रेसफुल और कंपोज लोग होते हैं, और उन्हें दुश्मन की और इन जाहिलों की हर चाल का पता होता है, और इन्हें उनके साथ निमटना आता है। इसीलिए ये कहा, ये वद्दू मा अनितुम, ये तो चाहते हैं कि तुम तकलीफ पाओ, यानी ये भी कहते हैं कि ये इतने ज्यादा लोग जो बाहर से आ गए, इनको वोट करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब इनके बाज ममालिक में जिनमें फ्रांस शामिल है, मुसलमानों की इतनी आबादी हो गई है कि अगर वो सारे मिलकर किसी एक पार्टी को वोट दें तो वो पार्टी जीत जाएगी। अब इन्हें खदशे पड़ गए हैं, अब इन्हें खतरे पड़ गए हैं उन मुसलमानों से जिनमें ये फैमिली प्लानिंग बेचते हैं, और जिनको कहते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, तो वो मुसलमान जो आठ आठ और नौ नौ बच्चे पैदा कर रहे हैं, आज वो इनके लिए खतरा बन गए हैं, क्योंकि ये खुद एक दो बच्चों से अब आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो ये कुरान की बातें जो है ना जी, ये दिल से सुना करें और इस पे दिमाग इस्तेमाल किया करें और इन्हें समझा करें, ये ऐसी वैसी बातें नहीं है। कद बदतिल बग़ा, तहकीक इनका बोझ तो जाहिर हो चुका है इनके मुंह से, है जी, ये हमें जाहिल कहते हैं, ये हमें गंदे कहते हैं, ये कहते हैं हम में से बदबू आती है क्योंकि हम इनकी तरह बहुत ज्यादा खुशबुएं लगा के नहीं फिरते हैं। तो मुसलमान को पूरा एहतमाम करना चाहिए सफाई और नजाफत का, खूबसूरत लिबास का, अच्छा नजर आने का, तालीम हासिल करने का, कि वो इन इनके साथ इनके इनकी सतह पे इनके साथ इक्वल मुकाबला कर सके। और जो इनके दिलों में छुपा है वो तो बहुत बड़ा है। दिलों में क्या छुपा हुआ है? वो हमें हमारे दीन से फेरना चाहते हैं क्योंकि उन्हें इस दीन से नफरत है, क्योंकि उन्हें आखरत के कॉन्सेप्ट से नफरत है। قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ, अल्लाह कहता है तहकीक हमने तो बयान कर दी है तुम्हारे लिए अपनी आयात, इन कुन तुम तअखिलून, अगर तुम अकल रखते हो। हा अंतुम उलाए, सुन लो, तुम सुन लो, उलाए वो लोग, तुहिब्बूनहुम, तुम दोस्त रखते हो उनको, तुम मोहब्बत करते हो उनसे, वला युहिब्बूनकुम, और वो तुम्हें दोस्त नहीं रखते, वतुमिनूना, और तुम ईमान रखते हो, बिल किताबे, किताब पर, कुल ही, सब की सब, यानी ए ईमान वालों, तुम तो सारी किताबों पे ईमान रखते हो, तुम्हें तो, तुम्हारे लिए तो इंजील, तौरात, कुरान सब बायसे इज्जत हैं और तुम उन सब की इज्जत करते हो, लेकिन ये ऐसे ऐसे ये लोग नहीं हैं, ये तुम्हारी किताब पे बिल्कुल यकीन नहीं रखते, ये कहते हैं कि ये एक जंग की किताब है, ये कत्ल की किताब है, नाउज़बिल्ला। وَإِذَا لَقُوكُمْ, और जब ये तुम और जब वो तुमसे मिलते हैं, قَالُوا آمَنَّا, वो कहते हैं हम ईमान लाए, وَإِذَا خَلَوْا, और जब वो अकेले होते हैं, عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ, عَضُّوا, वो काटते हैं, वो काट खाते हैं, عَلَيْكُمْ, तुम पर, الْأَنَامِلَ, अपनी उंगलियां, من الغيظ, गुस्से से, यानी गुस्से से वो अपनी उंगलियां चबाते हैं कि वो अपने मुंह को अपने मुंह रोक लें वो बातें कहने से जो नफरत के कलमे वो तुम्हें कहना चाहते हैं। ये खास तौर पे मदीना के यहूद के लिए आया है, वो इस कदर नफरत करते थे मुसलमानों से और जो मुनाफिकीन थे कि वो रोज बरोज देखते थे, सॉरी मदीना के, कि ये लोग एक इख्तदार हासिल करते जा रहे हैं, ये एक कंट्रोल हासिल करते जा रहे हैं। कूलू, कह दीजिए, मुंह तू बिगैज़िकुम, मर जाओ तुम अपने गुस्से में, एक यानी कि गुस्से का कलमा है अल्लाह की तरफ से कि मर जाओ तुम अपने गुस्से में। इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह, अलीमुन, वो जानने वाला है, बिज़ाति सुदूर, दिलों की बातें। इन तमसस्कुम, अगर तुम्हें पहुंचे, हसनतुन, कोई भलाई, तसुहुम, उन्हें बुरी लगती है, व इन तुसिबकुम, और अगर तुम्हें पहुंचे, सैयअतुन, कोई बुराई, यफरहू बिहा, उनके दिल ठंडे हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। तो आज आप अपने इर्द गिर्द के हालात देखें, इनके हमारे ऊपर तबसरे देखें, कोई भी अच्छी वेबसाइट खोल के देखें कि ये लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, ये हमारे बारे में किस किस्म के ख्यालात रखते हैं और ये किस किस्म के ख्यालात प्रोपेगेट कर रहे हैं मुसलमानों के बारे में। आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि हमारी हमारे अंदर जो बुराइयां पाई जाती हैं वो इनके लिए किस कदर बायस फरहत हैं और बायस सुकून है, और ये इनके दिल कितने ठंडे हैं हमारे लिए, कि ये जाहिल मुसलमान जो कोई तरक्की नहीं कर रहे, जो कहीं नहीं जा रहे और जो हमेशा इनके मोहताज रहेंगे, वो इन्हें कितना खुश करते हैं। व इन तस्बिरु, और अगर तुम सबर करो, वतत्तकु, और परहेजगारी करो, ला यदुर्रुकुम, नहीं तुम्हारा कुछ भी जरर कर सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कई दहुम, इनके फरेब, शैआ, इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह, बिमा यअमलूना, उस पर जो ये अमल करते हैं, मुहीत, इन्हें घेरे हुए है, इनके इर्द गिर्द एक कंट्रोल में है। अब अल्लाह ताला ने यहां क्या बताया, प्रैक्टिकल टिप क्या है, ये समझने की बात है। यहीं पे मैं खत्म करूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्कशन थी इस सबक में और आगे जंगे बदर का बयान शुरू हो रहा है, जो एक प्रैक्टिकल अल्लाह ताला आपको तमसील दिखा रहा है, आपको एक ड्रामा दिखा रहा है कि देखो जो मैं तुम्हें नसीहत कर रहा था ना कि इनको अपने करीबी दोस्त ना बनाओ और इनके साथ भिड़ जाओ अगर ये हमला करें, तो फिर जो जब ये हुआ था तो उस वक्त फिर क्या हुआ था और अल्लाह ने कैसे नुसरत फरमाई थी। तो अल्लाह फरमाता है वह इन तस्बिरू, पहले तो सबर करना है, सबर के तीन दर्जे समझ लें। اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو حرام سے روکنا، یہ صبر ہے. اگلا درجہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو حلال چیزوں سے روکنے پہ بھی آمادہ کرنا. یعنی اللہ اگر مشکوک چیز ہے، حلال ہی ہے لیکن تھوڑا سا بھی اس میں شک ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، تو اس چیز کو چھوڑ دینا. اور پھر صبر کا فائنل درجہ جو ہے، اللہ کی راہ میں خود کو حلال چیز سے روک لینا، جیسے روزہ ہے. یہ تین بہت سمپل ہے، مطلب ویسے تو صبر بہت بڑا سبجیکٹ ہے لیکن یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لیے، پہلا درجہ حرام سے رک جانا اور خوشی خوشی رک جانا، دوسرا درجہ مشکوک سے رک جانا اور خوشی خوشی رک جانا. اور یہ صرف کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، مثلا مشکوک آمدنی، بہت سے لوگ پرائز بانڈز پہ بہت سال لڑتے رہے ہیں، اب پتہ چلا ہے یہ حرام ہے. مثلا جوا کھیلنا، مثلا کہیں پہ لاٹری میں جا کے، لاٹری کہتے ہیں بھائی ہم نے بھی تو ٹکٹ خریدا ہے، ساری حرام چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، جو لوگ جب یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حرام ہے اور ان سے رک گئے، وہ صبر کے دوسرے درجے پر تھے. اور فائنل درجہ ہے اللہ کی راہ میں حلال چیز سے رک جانا، صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور اس کی مثال جو ہے وہ روزہ ہے، صرف روزہ نہیں ہے. اب اللہ کی راہ میں حلال چیز سے رکنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مجھے میرا دل کچھ کرنے کا چاہ رہا ہے جو بالکل حلال امر ہے، لیکن میں یہ سوچوں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوگا، کس کام سے راضی ہوگا، اور میں اس حلال چیز سے رک جاؤں بلکہ میں اللہ کو خوش کرنے والے کام میں لگ جاؤں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے حلال امور سے بھی رک رہے ہیں.